اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے کفر کر دیا. اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو کیا ریاکاریاں کرتے. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال غارت. میں نے آپ کو بتایا حبطہ کیا ہوتا ہے، جانور کا کھا کھا کے پھول جانا اس کا پیٹ کا، تو اس کو کہا جاتا ہے حبطت بطن دابا، دابا کا بطن جو ہے وہ پھول گیا اس سے کھا کھا کے، حبط ہو گیا. تو لیکن حالانکہ وہ زہریلی گھاس ہے جو اس نے کھائی ہے، وہ دیکھنے میں موٹا تازہ لیکن اندر کیا ہے، اس کی ہلاکت. تو ان کے بھی عمل دیکھنے میں تو بہت نیکی کے لگتے ہیں. اسے میں آپ کو کہہ رہی نا کہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، دیکھنے میں حجاب ہم لگا لیں، بائے پہن لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تسبیح آپ گھماتی جائیں، یوٹیوب پہ آپ کے اتنے چینل ہو جائیں، مشہور بھی ہو جائیں اور لوگ بھی بہت نیک سمجھتے ہیں، بڑا پوچھتے ہیں، تو اس سے ہم اور پھول جاتے ہیں. ہم تو کتنے نیک ہیں نا، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا کچھ کرنے کا، نیکی کی تو پیک پہ ہم پہنچ گئے، اب اور ہم نے کیا کرنا. لیکن اعمال سارے ضائع ہو گئے. اس سے ڈرنا چاہیے کہ انسان کے عمل ضائع ہو جائیں، اس سے ڈرنا چاہیے کہ انسان جن چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ بس یہ چیزیں قیامت کے دن مجھے نجات دے دیں گی، یہ نیکیاں، وہ نیکیاں اس کو برباد کر ڈالیں. اس سے ڈرنا چاہیے. ان کی محنت کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے. ایسے نہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر محنت نہیں کی، محنت بہت ہے لیکن وہ محنت کسی کام کی نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، تو ان کے لیے قیامت کے دن وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا. یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال ہی نہ تولے جائیں، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن ہی کچھ بھی نہیں ہوگا. قیامت کے دن اعمال بھی تولے جائیں گے. فمن خفت موازین، آتا ہے نا کہ جس کے موازین ہلکے ہوگا، اس کا مطلب وزن ہے، اور ثقلت موازینوں بھی ہوتا ہے، بھاری بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. دیکھنے میں کتنے بڑے ہیں لیکن وزن میں کچھ بھی نہیں. آپ نے دیکھا نا کئی چیزیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن بالکل ہلکے، آپ غبارے کو دیکھ لیں، اس کا کوئی وزن نہیں ہے حالانکہ دیکھنے میں کتنا بڑا. اسی طرح ان کے اعمال ہوں گے. تو کبھی اپنے عملوں سے دھوکا نہ کھائیں کہ میری نیکیاں تو بہت بڑی ہیں، جب تک ان کا وزن نہ کرا لیں. آپ نے وزن کرا کے دیکھا، آپ کو کیا پتا اس کا کیا وزن. تو یہ ہلکے ہو گئے ان کی ریاکاری کی وجہ سے، یا ان کے شرک کی وجہ سے، یا ان کی بدتوں کی وجہ سے، یا ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی ہی ہوگا، وہ قد آور ہوگا اور بہت موٹا تازہ ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی وزن والا نہیں ہوگا. اس سے ہمیں پتہ چلا حدیث سے کہ انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسانوں کو بھی تولا جائے گا وزن اس میں، میزان. انسان خود بھی تولیں گے اور ان کے بھی وزن ہوں گے. اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تو ہمارے وزن ہلکے رکھنا، لیکن آخرت میں ہمیں بہت وزنی کر دینا. یہاں پہ تو ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلم ہو جائیں، اسمارٹ ہو جائیں، ہمارا ویٹ کم ہو جائے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ یہاں پہ بھی صحت کے ساتھ ویٹ کم ہو جائے، لیکن وہاں پہ میزانوں میں ہمارا ویٹ بہت بھاری کر دے. تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے کہ پہاڑوں کے برابر، مگر میزان میں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا جہنم ان کے کفر کی وجہ سے. اور سیکنڈ ریزن، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا. ایک تو مذاق لٹرلی بنانا، لٹرلی جب مذاق کیا جاتا ہے اللہ کے رسولوں کا، ان کی باتوں کا، ان کی تعلیمات کا، اور اللہ کی آیات کا، اس کے احکامات کا. آج دیکھیں غیر مسلموں کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو خیر ہیں ہی غیر مسلموں، تو مانتے ہی نہیں، لیکن مسلمانوں میں कितने ही मुसलमान हैं जो जन्नत का मजाक, जहन्नुम का मजाक, कयामत का मजाक, हूरों का मजाक, पर्दों पर्दे का मजाक, दाढ़ी का मजाक, टखनों से ऊपर शलवार करने का मजाक, कितनी चीजों का मजाक उड़ाते हैं। कोई मस्जिद जाता जाता देख ले तो उसका मजाक, मजाक के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बातें ही रह जाती हैं इनको। अब रसूल का साफ तौर पे तो कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, लेकिन उनकी तालीमात का मजाक उड़ाना उनका मजाक ही उड़ाना है। मतलब आप मेरी बातों का जाके कहीं बातें मेरी बता के और जो मैंने कही है उस पे मजाक बनाए तो क्या मतलब होता है इसका? मेरा ही मजाक उड़ाना हुआ ना। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उन्होंने जो बातें जो हदीस में साफ वाजी आती हैं उन बातों का मजाक उड़ाना तो आप का मजाक उड़ाना। आयात का जो कुरान में आयती हैं उनके ऊपर मजाक है, पर्दे की आयत है उसके ऊपर मजाक है, सूद की आयत है उसके ऊपर मजाक है। कभी किसी चीज को पकड़ लेते हैं, कभी किसी चीज को। ये जहन्नुम इसलिए है कि इन्होंने इनकार किया और इन्होंने मजाक बनाया। काफिर तो मजाक बनाते ही थे उस जमाने में। आज हमें डरना चाहिए इस चीज से। आपसे कोई काम हो नहीं हो वो अलग बात है, मजाक ना बनाए। और एक मजाक बना देना ये भी होता है कि इंसान किसी चीज को इतना हल्का लेता है कि उसको मजाक ही बना लेता है। उस कहते हैं ना, तुमने पढ़ाई को मजाक बनाया तो वो मजाक तो नहीं उड़ाता, लेकिन इतना हल्का लेता है उसको। वो लोग जो ईमान लाए और साले अमल करे उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी के तौर पे 70 दफा के करीब कुरान के अंदर ईमान और साले अमल, ईमान और साले अमल ये साथ साथ आए हैं। कहीं ऐसे नहीं है कि ईमान आया साले अमल नहीं आया, और ये कहीं ऐसे भी नहीं है कि नेकियां करते रहो ये नेक ही काम है, तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, चैरिटी वर्क कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, और ईमान चाहे तुम्हारा हो ना हो। हमें पता चलता है ईमान भी होना जरूरी और साले अमल भी होना जरूरी है। साले अमल की 2 शराइत मैंने आपको बताई है और दोनों पूरी होनी चाहिए। एक इखलास होना चाहिए, यानी ना कोई रियाकारी, ना कोई किसी और के लिए, ना फलां के लिए फलां के लिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की खातिर हो। और यही ये सबसे मुश्किल है अपने अंदर पैदा करना। और नंबर 2 क्या है, सुन्नत के मुताबिक भी हो। बाज दफा हम कोई नेक अमल करते हैं और कहते हैं नहीं मेरी नीयत अच्छी है, नीयत मेरी इतनी अच्छी है। नीयत क्या है? चैरिटी वर्क है ना, मैं डोनेशन इकट्ठा कर रही हूँ, मैं सैलाब जदगान के लिए कर रही हूँ, और उसके बाद कर क्या रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, उसमें नाच गाने हो रहे हैं, चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है जिसमें फिल्मी सितारे हमने बुलाए हैं। ये आपकी नेक नीयत ही सिर्फ काफी नहीं है, वो काम भी सही होना चाहिए, वो तरीका भी सही होना चाहिए। तो हम ये हमारी नेकियों के हालात हैं, तो अपनी तरफ से ही सोच लिया कि क्या चीज नेकी है। अल्लाह ताला हदीस में आता है अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, आपके पास कितना पैसा है, आपका कितना बैंक बैलेंस है, या आप कितनी हसीन है, या आप कितना मेकअप लगा के कितनी खूबसूरत लग रही है, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। दिल भी देखता है और अमल भी, दोनों जरूरी है। नीयत भी सही हो और अमल तरीका भी सही हो। तो ईमान और साले अमल, ईमान से मतलब क्या है, अकीदा, अकीदा आपका दुरुस्त होना चाहिए और अमल भी सही। मुर्जिया एक फिरका गुजरा जो कहता था कि अमल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक अल्लाह पे ईमान लेकर आए बस काफी है, इससे ही आप जन्नत में चले जाए। हालांकि आप कुरान को देख लें तो सारा वक्त हमें बताता है ईमान और सारे अमल, वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। जन्नतुल फिरदौस कौन सी जन्नत है? ये वो जन्नत है जो सबसे बुलंद जन्नत है। जन्नत भी एक दर्जे की नहीं है, इसमें भी दर्जात है, और टॉप का जो दर्जा फिरदौस है, जिसकी छत अल्लाह तला का अर्श है, और जिस जैसी कोई जन्नत नहीं है। और ये वो जन्नत है जो उनको मिलेगी जो ईमान और सारे अमल करने वाले। तो क्या सारे ही ईमान और सारे अमल करने वालों को यही जन्नत मिल जानी है? तो फिर दूसरी जन्नतें किसके लिए? नहीं, ईमान और सारे अमल करने वाले तो बहुत सारे हैं। ये ऐसे ही है जैसे जैसे मैं कहूं कि जितने लोग पास होंगे, जो लोग पास होंगे उनको इनाम मिलेगा। अब इनाम सारे पास होने वालों को नहीं, मतलब है इनाम उन लोगों के लिए ट्रॉफी है जो जो ए ग्रेड वाले होंगे या जो पोजीशन होल्डर्स होंगे, लेकिन उनका पास होना तो जरूरी है ना। ईमान और साले अमल तो सब में ही होगा, तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ईमान और साले अमल की क्वालिटी और क्वांटिटी जिसकी बेस्ट होगी, यानी ईमान और साले अमल, इनके अंदर भी टॉप पे जाना, क्योंकि ईमान भी तो घटता बढ़ता रहता है ना। ईमान भी किसी का बिल्कुल लोएस्ट दर्जे का है, किसी का मीडियम है, किसी का हायर लेवल का है, कोई हमारे जैसे हैं जो बिल्कुल ही एक बिल्कुल बिगनिंग लेवल के ईमान के ऊपर होते हैं, कोई बहुत तो ऊंची, जैसे सहाबा का ईमान कितना ज्यादा था। ईमान वाले तो हम भी खुद को कहते हैं, अल्लाह हमें उस कैटेगरी में शामिल कर ले, आके ही हम उस फहरिस्त में तो हो जाए शामिल। पता नहीं अब इसके अंदर भी, या अल्लाह हमें खालिस ईमान अता फरमाए, ये ना हो कि मुनाफ़त हो इसके अंदर। तो कोई लो होंगे, कोई मीडियम होंगे, जो हाईएस्ट के होंगे ना वो जन्नत और फिरदौस में जाएंगे, और जो छोटे छोटे लोएस्ट ईमान वाले होंगे वो तो बाकी जन्नतें भी तो हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता ये फरमाया कि तुम अपने लिए जब मांगो तो जन्नत उल फिरदौस की दुआ किया करो। तो हम सब मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका जन्नत उल फिरदौस, अल्लाह हमें जन्नत उल फिरदौस अता फरमा, क्योंकि हम इस काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ईमान आपको समझ आ गया कि अकीदा बिल्कुल सही हो और ईमान पक्का हो, और ईमान भी हाईएस्ट लेवल का हो, और अमले साले भी हाईएस्ट लेवल। देखिए साले अमल तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका भी साले अमल है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन उसका भी साले अमल है जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, और भी नवाफिल अदा करता है, और उससे भी ज्यादा उसका साले अमल है जो सारी ही ये नमाजें भी पढ़ता है, यानी क्वांटिटी भी उसकी ज्यादा है, दूसरों पर इसके अलावा नवाफिल भी है, लेकिन उनके अंदर इतना खुशू है, इतनी उसके अंदर आजी है, इतनी जबरदस्त नमाज है। अब नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन एक हायर लेवल की भी तो नमाज है। इसी तरह आप सारे नेक आमाल में कर ले, चाहे वो सदका व खैरात है, चाहे वो रोजा रखना है, चाहे वो रोजा तो सारे ही 12 घंटे का ही रोजा रखेंगे, अगर 12 घंटे का है तो कोई 13 का तो नहीं रख लेगा ना, लेकिन एक का रोजा है, वो क्या बात है उसके रोजे की, उसके रोजे के अंदर अल्लाह का जिक्र भी है, उसके अंदर रोजे के अंदर शुक्र भी है, उसके रोजे के साथ और नेकियां भी हैं। एक का रोजा है वो बस, ठीक है रोजा तो है लेकिन और चीजें नहीं है ऐसी अंदर। तो यानी एक चीज है ना, देखिए जैसे आप समझ लें कि घर है, घर को सजावट करना, किसी ने बस ज्यादा ही रखा हुआ है, घर उसके पास भी है, दूसरे का थोड़ा सा सजा हुआ है, तीसरे का फुल सजा हुआ है, वो चौथे का इतना सजा हुआ है कि बस वो जो देखे वो आशाश कर उठे। घर तो सारे ही घर हैं, घर तो सारे ही मकान है, लेकिन हर घर में फर्क होगा ना, इसी तरह अमल के घर में भी फर्क है सबके, हम सब के अमल में फर्क है। अमल सारे ही कोशिशें कर रहे हैं कोई नेक अमल करने की, सबके नेक अमल डिफरेंट लेवल्स के हैं, आसान अमल किसका है अल्लाह वो देख रहा है, बेस्ट। अल्लाह हु अकबर, खालिदीन फीहा, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। अच्छा मैं शुरू में भी देखे सुभान अल्लाह, इस सूरत के शुरू में भी आया था जहां मैंने आपको जन्नत की कुछ बातें बताई थी, और एंड भी जन्नत के उससे आ रहा है, शुरू में भी जन्नत जहन्नुम का जिक्र, एंड में भी जन्नत जहन्नुम का जिक्र। तो खालिदीन फीहा उसके अंदर हमेशा रहने वाले हैं, और ला यबगूना अनहा ही वाला, नहीं चाहेंगे इसमें कोई बदलना, कोई टलना, कोई इस जगह से मूव होना नहीं चाहेगा, इस जगह को बदलना नहीं चाहेगा। क्या मतलब है कि देखें, दुनिया के कंपैरिजन से बताया गया कि दुनिया में तो आप किसी जगह रह लो, कुछ चंद साल आप रह लेते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपके पास वसाइल हैं तो इंसान कहता है इससे अच्छे घर में, इसी अच्छी लोकेशन वहां पे मिल रही है तो वहां पे जाके रहते हैं, ठीक है। वो मतलब उसको खूब से खूब तर की तलाश होती है, क्योंकि अब जितना भी अच्छा घर बना ले उसके बाद होता क्या है कि वो ही घर जो आपने इतने शौक से बनवाया, इतने शौक से आपने उसके अंदर मूव हुए और इतना बड़बड़ के सबको बताया, कुछ अरसे बाद वो घर नॉर्मल सा लगने शुरू हो जाता है, और फिर और कुछ अरसा गुजर जाए तो फिर होता है कि हाँ ठीक है बस है मेरे घर, लेकिन ऐसा भी कोई खास नहीं, फलां का घर देखो कितना अच्छा, यानी वो बोर हो जाता है उससे, या वो उसको अब इतना कुछ अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो उससे आगे चल पड़ता है। इस तरह गाड़ियों में देख लें, उस तरह कुछ सब चीजों में आप देखें, कपड़ों में देख लें आप, एक कपड़े के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं सिलवाने की और उसको लाने की, और कितनी उसके बाद वो एक आम सा लगना शुरू होता है, और उसके बाद तो आप किसी को ही दे देते हैं। तो दुनिया में बोरियत है, दुनिया में कुताहट है, वहां पे कुताहट नहीं है वहां पे। यहाँ पे तो चंद सालों में इंसान उकता जाता है ना, वहां पे हमेशा हमेशा की जिंदगी में। अब आप सोचें, बंदा सोचता है हमेशा हमेशा जिंदगी में बोर नहीं हो जाएंगे? कई लोग सवाल करते हैं, हम बोर हो जाएंगे वहां पे जब सारा कुछ मिल जाएगा, बोरियत नहीं हो जाएगी? नहीं, बोरियत होती इसलिए क्योंकि वहां पे बोरियत वाली चीज ही नहीं, वहां पे हर लम्हे एक्साइटमेंट की कोई चीज होगी, इंजॉयमेंट की कोई चीज होगी, कोई नया से नया आपके लिए फन होगा ऐसा, कि जो इतना इन्वॉल्व रखेगा कि कोई बोरियत का सवाल ही नहीं है। लेकिन याद रखें, ये जो हमें हम सोचते हैं ना, बस इतनी ही है जन्नत की चीजें जो कुरान में बता दी गई, खाना है, पीना है, हो रहे हैं तो ऐसे खा रहे हैं, बस यही है। नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है। ये तो वो चीजें सिर्फ बताई गई जो हमारी दुनिया से कुछ ना कुछ कंपेरेबल थी तो हम समझ सकते थे। अनगिनत चीजें वहां पे ऐसी हैं जिनको हम समझ ही नहीं सकते, जिनको हम सोच ही नहीं सकते, हमारी ये सोच में आ ही नहीं सकती। इसलिए तो है ना कि वो जिस आंख न, किसी आंख ने ना देखी ना सुनी ना कभी किसी दिल पे उसका गुजर हुआ। तो वो ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब क्या कौन आपको कैसे बताए यहाँ पे कि वो क्या चीज है, जब समझ ही नहीं सकते तो कैसे बताया जाए? तो वहीं जाके देखेंगे तो फिर वहां पे बोरियत तो हो ही नहीं सकती। इसलिए ये चीज का सोचना कि हाय फिर वहां पे क्या, हम तो इतना अरसा रहेंगे तो क्या होगा, तो नहीं। हमेशा ये याद रखें कि वहां पे इंसान की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जाएगी। और देखिए शुरू में आया था ना, मा किसी ना फी, आप बता, मैंने उस वक्त भी आपको बताया, और मैंने आपको बताया था वहां पे खालिदीन फीहा नहीं आया, तो यहाँ पे एंड में खालिदीन फीहा। अल्लाह अकबर। लेकिन ये देख लें किसको मिलेगा, आमन वामिर सालेहा। तो फिर ये ना कहें हम कभी, हमसे नहीं अमल होता, हमसे नहीं अमल होता, बस इसका मतलब ईमान अगर पक्का है ना तो अमल जरूर होके रहेगा। अगर अमल नहीं हो रहा, जो लोग कहते हैं हमसे अमल नहीं होता, बड़ा मुश्किल, हम नहीं अमल कर सकते, ये अलग बात है, इंसान कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना हमसे अमल होता ही नहीं, वो याद रखें कि उनके ईमान में कमजोरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज का यकीन रखते हैं, मसलन आपको कोई कह दे कि मिसाल के तौर पे छोटी सी बात कि आपकी अभी लाइट जाने वाली है, अगर आपको यकीन होगा ना, सारे भागेंगे, हम अपने फोन चार्ज पे लगा दे, हम जल्दी से और इंतजाम कर लें क्योंकि अभी लाइट जाने वाली है, क्योंकि आपको यकीन है, आप उठेंगे भागेंगे ना, और आपको नहीं, मुझसे नहीं भागा जाता, इसका मतलब आपको यकीन ही नहीं। इस तरह आपको पता चल जाए कि आपके घर वालों को कोई खतरा है किसी चीज से, आप उठेंगे भागेंगे और उसको उस खतरे से उनको बचाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको यकीन है इस बात पे कि वाकई वो खतरे में। कैसे हो सकता है, हमारा ईमान है जन्नत पे, जहन्नुम पे, कयामत के दिन पे हम उठ के कुछ करें ही ना, ईमान में कमजोरी है। बाज लोग वो कहते हैं ना कि हम ठीक है, हम अमल नहीं करते, हमारा ईमान हमारा बड़ा पक्का है, ये गलत बात है। इसलिए कि अगर ईमान इतना ही पक्का होता ना, तो फिर अमल के बगैर आप रह ना सकते। तो अगर सिर्फ ईमान से ही इंसान जन्नत में जा सकता होता, तो इबलीस भी जन्नत में चला जाता, इसलिए कि उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, उसने अल्लाह ताला को अहद माना था, और उसने ना सिर्फ ये बल्कि अल्लाह से दुआ की थी, और वो कयामत के दिन पे भी ईमान रखता था, इसीलिए उसने कहा था ना कि या अल्लाह मुझे कयामत के दिन तक मोहलत देते। लेकिन अमल नहीं है उसका, अल्लाह की इताअत नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी है। तो याद रखिए, ईमान अकेला नहीं, अमले साले साथ होना जरूरी है, तब उसमें हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो एक दर्जा है जन्नत का, जो बुलंद तरीन दर्जा है फिरदौस। वैसे फारसी का लफ्ज है, लेकिन अरब भी इसको यूज करते थे, इसी से पैराडाइज है, पैराडाइज फिरदौस एक जैसे लगते हैं, वो इसी से है। अल्लाह अकबर। और बाज़ उलमा कहते हैं कि सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये जो कुरान के अंदर जितनी बातें डिस्क्रिप्शंस आई हैं ना जन्नत की, वो कहते हैं वो तो जन्नत के दूसरे जो लेवल्स हैं उनकी हैं, जो जन्नत फिरदौस की नेमतें हैं वो तो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, ये वो जन्नत है जहां से सारी नहरें जन्नत की जो है ना इसी से फूटती। अल्लाह वो पता नहीं कैसी जगह होगी। अल्लाह ताला हमें भी पहुंचा दे, हमारे जैसे लोगों को भी। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें जन्नत के शौक लगा दे। कुल लौ कान अल बहर मिदादन लि कलिमाति रब्बी, कह दीजिए अगर समंदर स्याही बन जाए अपने रब की बातों के लिए, मेरे रब की बातों के लिए, लनफिद अल बहर, अलबत्ता खत्म हो जाए समंदर, कबला अंतन फत कलिमात रब्बी, इससे पहले के तेरे रब की बातें खत्म हो। वलो जीना भी मिथली ही मदद आ, चाहे आप इस जैसी, चाहे हम इस जैसी और इजाफे में और इंक ले आए और इसमें इजाफा कर दें, फिर भी ये रब की बातें जो हैं वो खत्म नहीं होनी। सुभान अल्लाह, ये इतनी अजीम आयत है, अजमत का इजहार करती है अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला की अजमत कितनी है, कितनी है कि समुंदर स्याही भी बन जाए। जैसे सूरह लुकमान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वलो अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अकलाम बल बहरी, और अगर इस जमीन पे जितने शजर हैं वो कलमे बन जाए और जो बाहर है वो स्याही बन जाए, और उस जैसे सात समंदर और आ जाए और सारे जिन नेन सब लिखना शुरू हो जाए अल्लाह ताला की कलिमात को, तो अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। ये सब कलमे घिस जाएंगी, समंदरों की स्याही खत्म हो जाएगी। सात समंदर और भी ले आए, फरिश्ते भी लिख रहे हैं, इंसान भी लिख रहे हैं, जिन भी लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं और सब अपने अपने इल्म के मुताबिक लिख रहे हैं। अल्लाह की बातें, उसके अकामात, उसकी हिकमतें, उसकी मखलूक की बातें, उसके बारे में बातें, ये सब कलिमात हैं, उसका सारा जिक्र, घिस घिस के कलमे खत्म हो जाए, समुद्रों की स्याहियां खत्म हो जाए, अल्लाह की बातें खत्म ना हो। इतनी बेशुमार बातें हैं उसकी, कि वो कौन है, उसकी कुदरत कैसी है, उसकी इज्जत कैसी है, उसका इल्म कैसा है, उसकी हम्द, उसकी तारीफ, उसकी सना, उसकी सिफात, ये सब बातें कलिमात में आती हैं। उसकी कुदरतों का इजहार, ये अल्लाह ताला की अजमत समझाने के लिए असल में ये आयत है, कि देख लो वो रब कैसा है। बाज यहूद कहते थे ना कि हमारे पास वो तौरात आ गई तो बस हमें सारा इल्म मिल गया। कहा गया तुम्हारे पास तो बहुत कलील इल्म है, उन्होंने कहा नहीं, हमें तो तौरात मिल गई, सब कुछ, सब इस तौरात में ही है बस, और कुछ नहीं है। तो बता दिया गया कि रब की तो बातें ऐसी हैं, रब तो कलिमात ऐसी हैं, सुभान अल्लाह। और फिर आखिरी आयत जो आती है उसमें बता दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, के कुल इन्नमा अना बशर मिथलुकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था ना कि आप जवाब दें, तो बताया कि मैं तो तुम्हारे जैसा एक इंसान ही हूं, यूहा इलैया, वही की जाती है बस मेरी तरफ, यानी खाने में, पीने में, गम में, खुशी में, और जैसे शादी करने में, बच्चे पैदा होने में, और तकलीफ होने में, बीमारी आने में, सर्दी गर्मी लगने में, आप सरसर ऐसे ही हैं जैसे दूसरे इंसान हैं। पर कहाँ पे जाके फर्क पड़ता है कि आपका मकाम बहुत ऊंचा है, किस वजह से मकाम ऊंचा है, कि यू आई लिया के वही की गई जाती है मेरी तरफ, और क्या वही की जाती है जिसका बेसिक पैगाम क्या है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, के तुम्हारा इलाह सिर्फ एक है, एक इला, ला इला इल्ला ला, ये कहा जा रहा है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद का मतलब क्या, ला इला इल्ला, और यही पैगाम तमाम पैगंबरों का था, कि ये पैगाम देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में इसलिए नहीं भेजे गए कि वो आप लोगों को कहें कि लोगों ये लोगों के साथ भलाई का सलूक किया करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं के साथ हसने सलूक करो, ये करो, ये चैरिटी वर्क, और ये सफाई रखा करो, तहारत का इंतजाम किया करो, वो तो इसके अंडर आती हैं सारी चीजें। बेसिक पैगाम जो कोर है सब तालीमात का, सारी रसूलों की तालीमात का वो एक ही है, और वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो पैगाम लेकर आए। यानी अकीदा, अकीदा दुरुस्त करने की जरूरत है, ये सिर्फ एक की बंदगी करो। फमन काना यरजू लिका रब्बी, तो जो कोई उम्मीद रखता है अपने रब की मुलाकात की। आप उम्मीद रखते हैं? आपको उम्मीद है कि आपने अपने रब से मुलाकात करनी है? जितनी भी जिंदगी है उसे आगे देख लें कि कितनी और बाकी होगी। चलो 100 साल भी लगा लें, 90 साल लगा लें, तो कितनी रह गई है? 30 साल, 40 साल, 50 साल रह गई है, कितनी रह गई है? क्या शायद उससे बहुत पहले 1 साल रह गई हो, शायद 6 महीने रह गई हो, लेकिन उसके बाद भी क्या है, मुलाकात है अल्लाह ताला से। तो जो कोई भी उम्मीद रखता है अल्लाह से मुलाकात की, वो क्या करे फिर? अगर हम सब का जवाब हाँ में है, तो फिर हमें दो काम करने, फल यामल अमलन सौलेहन, वो अमल करे सौले, वला युशरिक भी इबादती रब्बी ही अहदा, और ना शरीक करे अपने रब की इबादत में किसी एक को भी, किसी एक को भी। यानी कोई भी नेक अमल करें तो साथ साथ चेक करें कि इसमें मैंने किसी को शरीक तो नहीं कर लिया। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये हदीस पहले भी बताई है, और एक और हदीस में आता है कि जुंदुब बिन जुबैर साहबी जब नमाज पढ़ते या रोजा रखते या सदका करते, फिर देखते कि लोग इन आमाल से इनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इससे उनको खुशी होती है और अपने इस अमल को और ज्यादा कर देते। इस पर यह आयत नाजिल, यानी ये भी नहीं करो कि जो है कि कोई खुश हो जाए इससे, और ज्यादा कर दिया इसलिए कि वो खुश हो रहे हैं। यानी अब क्या हुआ, ज्यादा किसलिए किया, वो खुश हो रहे हैं, तो कोई मिलावट तो आ गई ना, मिलावट नहीं अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। तो यहाँ पे खास तौर पे मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो शरीक करना है ये शिर्के खफी है, रियाकारी है। एक शख्स, रिवायत में आता है कि मुसलमानों में एक शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है, इतनी बड़ी फजीलत वाला काम, उसके साथ उसकी ये ख्वाहिश होती है कि लोगों में उसकी बहादुरी या उसकी गाजी होने की या उसकी इस तरह की चर्चा हो, और इसके बारे में ये आयत नाजिल हुई कि नहीं, किसी चीज को भी, अमल को खालिस होना है। और मैंने जैसे आपको भी बताया कि अमलन सौलेहन और ईमान अकीदा, वही दो चीजें हैं यहाँ पे, नेकी का काम करना। और नेकी के काम में क्या हमने बात आज सीखी है, नेकी का काम वो नेकी नहीं होती जिसको कोई कोई कह दे कि ये जी नेकी है, या ये नेकी में भी हमने किधर देखना है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने नेकियों के अंदर भी खुद ही बना लिया कि ये नेकी है। अब ये जो आपकी है, ये जो आइसिस है, दाएश है, ये भी तो नेकी के उसके ऊपर ही करते हैं ना कि वो जान ने अपनी कुर्बान कर दी। लेकिन कयामत के दिन वही वाली बात है जो पहले गुजरी है कि अल्लादीन अदल्ला सायुम फिल हयात दुनिया, उन्होंने तो अपनी जान ही दे दी दुनिया की जिंदगी में ना, कि वो सोचते हैं हमने बड़े नेक अमल कर लिए, हालांकि ये नेकी नहीं है और उसको नेकी बना लिया। तो अमले साले को देखने की जरूरत है, इसमें केयरफुल होने की जरूरत है, हम कौन से कामों को नेक समझ रहे हैं। ये ना हो कि हम नेक समझ रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ नेक ना हो, हमने वो करने हैं जो अल्लाह के यहाँ अमले साले कहलाते हैं। खुद ही ना डिफाइन करें इसकी डेफिनेशन को, और दूसरा अपने अकीदे को सही करना कि जब इंसान अल्लाह की रजा जुई के लिए सिर्फ काम करे, मखलूक की रजा जुई या अपनी शोहरत या इसकी इस शोहरत की नीयत भी इसमें ना शरीक, या लोगों की तारीफ करने की वजह से अपने आमाल को अगर बढ़ा देता है, तो ये भी शिर्के खफी है कि इन्होंने मेरी तारीफ कर दी। और हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इंसान अल्लाह ताला की खातिर कोई काम करता है, लेकिन वो लोगों में एक्सपोज हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है कोई नेकी का काम है, उसकी नीयत नहीं थी, अल्लाह ने बस किसी की जुबान पे उसकी तारीफ जारी कर दी, तो तब उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तिर्मिजी में यह हदीस आती है कि अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं बाज दफा अपने घर के अंदर अपने जानमाज पे नमाज में मशगूल रहता हूँ, अचानक कोई आदमी आ जाता है तो मुझे ये अच्छा मालूम होता है कि इसने भी मुझे इस हाल में देख लिया कि चलो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो क्या ये रियाकारी हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अल्लाह ताला तुम पे रहमत फरमाए, तुम्हें इस पर दो अजर मिलते हैं, एक खुफिया अमल करने का जो तुम पहले से कर रहे थे छुपा के कर रहे थे, दूसरा ऐलानिया अमल करने का जो उस आदमी के आने की वजह से हो गया। तो ये रियाकारी यानी नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि जब वो कोई तारीफ करता है अब उसको ज्यादा अच्छा करना शुरू हो गया। आप नमाज को वो तारीफ कर रहे हैं तो अब आप अपने काम को अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके लिए किया ना। फिर सीधी बात आ गई, आप ये कर रहे हैं कि हमें ये सर्टिफिकेट मिले कि हम फलां कोर्स में हैं, हम एडवांस कोर्स में हैं, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि मैं एडवांस में हूं। और फिर वरना फिर कैसे, क्या फायदा अगर लोगों को पता ही ना चला कि मैं एडवांस कोर्स कर रही हूँ। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि मैं ग्रुप इंचार्ज हूं, ये सारे अमल जाया हो जाएंगे। बस लोगों को तो सिर्फ ये शौक है कि बस हमें एक ठप्पा लग जाए इस चीज का, तो फिर क्या है, रियाकारी भी, इखलास तो नहीं है इसमें। हसन बसरी से इखलास और रिया के बारे में पूछा गया तो फरमाया, इखलास का तकाजा यह है कि तुम्हें अपने नेक और अच्छे अमाल का पोशीदा रहना महबूब हो, जैसे अपने बुरे अमाल का पोशीदा रहना महबूब होता है। हर एक को ये दिल करता है कि उसके बुरे अमल किसी को पता ना चले, लेकिन अच्छे अमल का होता है कि सबको पता चल जाए किसी का। और जब अगर किसी के सामने जाहिर भी हो जाए तो तुम ये कहो, या अल्लाह ये सब तेरा फजल है, तेरा एहसान है, मेरे अमल और कोशिश का असर नहीं है, तब भी इंसान ये कहे। वो पता है आपसे सलम ने एक दफा, ये इतनी मुश्किल बात है ना ये शिर्के खफी से बचना, कि आपने एक दफा फरमाया था कि शिर्क तुम्हारे अंदर ऐसे खुफिया तरीके से आ जाता है जैसे चूंटी की रफ्तार बे आवाज होती है ना, पता तो नहीं चलता अगर चूंटी कहीं से आ रही है, कहाँ पता चलता है, कोई आवाज लेके तो नहीं आ रही है, इतनी इस तरह से बगैर आवाज के आता है। तो फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बता दूं कि जब तुम वो काम कर लो तो शिर्क अकबर और शिर्क असगर सबसे महफूज हो जाओ, कि तुम रोजाना ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका अन उश्रिक बिका व अना आलम व अस्तगफिरुक लिमा ला आलम, ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे, अल्लाह ताला हम से इस सूरत को पढ़ना कबूल फरमाए। ये सूरत जैसे कि आपको पता है कि इसमें इतने सारे हमारे लिए सबक है, इतनी सारी हमारे लिए इसमें लेसन्स हैं। अब ज़ुल्करनैन की स्टोरी से जैसे कुछ लेसन्स हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना मिन हुज़िक्रा, इसमें अल्लाह ताला ने सबक रखा है, तो सबक लेना ज़रूरी है। तो जब हम तारीख के भी कोई वाकयात पढ़ें तो उसमें भी हमें सबक लेना ज़रूरी है, और कोई भी वाकया हो उससे सबक लिया तो वो फ़ायदेमंद है, और उससे कोई सबक नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं है, फिर अंधे बहरे बन के तो चीज़ों से हम गुजरते ही रहते हैं। तो सबक लें हर एक चीज से। दूसरे ये कि हमने देखा कि हर वो लीडर जो इंसानियत की इसलाह का काम करता है और ईमान वाला भी होता है, अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक भी होता है, वो अल्लाह ताला के यहाँ कितना बुलंद दर्जे वाला होता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तीन लोग हैं जो जब भी तुम्हें तुम्हारे सामने उनकी तुम इज्जत करो, उनकी तकरीम करना जरूरी है। एक उनके अंदर वो है जो बूढ़ा मुसलमान है, एजड जो लोग हैं। नंबर टू अहले कुरान, जो कुरान वाले हैं, कुरान उनके सीने में है या कुरान के सीखने सिखाने समझाने या कुरान के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं। तीसरा वो बंदा कि जो आदिल बादशाह है उसके भी इज्जत जरूरी, क्योंकि अदल के साथ बादशाहत के साथ अदल बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही मुश्किल कॉम्बिनेशन है। आम बंदा फिर भी अदल वाला हो जाता है, बादशाह के लिए अदल करना हुक्मरान के लिए वो बड़ा मुश्किल इंसाफ वाला हो जाएगा। और ये भी हमें पता चलता है कि ज़ुल्करनैन सेल्फ सेंटर्ड नहीं था, बल्कि वो लोगों के लिए काम करने वाला था, और उसके कारनामा को अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक कायम रखना, क्योंकि उसमें खलूस था, खैर ख्वाही थी और बेलॉस था। देखिए उसने पैसे भी नहीं लिए ना, बेलॉस काम ऐसे ही होते हैं ना। और फिर हमें इससे जिंदगी में ऑलवेज मूवमेंट, सरगर्मी के साथ लगे रहना, मेहनत करना, इसका भी दर्स मिलता है कि स्टेगनेंट लाइफ ना हो, आराम वाली जिंदगी नहीं बस। फिर हमने इसमें देखा कि उलमा ने इसमें से पॉइंट निकाला कि जो जराइम पेशा लोग हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाए। कहां से उनको पता चला, कहां से लिया उन्होंने, याजूज माजूज को जो कैद किया गया। और ये भी हमें पता चला कि हर जगह पे लड़ने ना खड़े हो जाएं, बल्कि कई जगह ऐसी होती हैं हिकमत से काम लें, जहां पे हमने झगड़ा नहीं करना होता। क्योंकि जैसे हम अब दीन जब सीखने लगते हैं तो हर जगह ही हम कोई बहस शुरू कर देते हैं, कहीं झगड़ा शुरू कर, खास तौर पे अपने रिश्तेदारों के साथ, तो इसके साथ झगड़ रहे हैं उसके साथ, बहुत दफा इग्नोर भी करना होता है। फिर हमने टीम वर्क का असर देखा कि इंसान टीम वर्क से काम करेगा ना, लोगों को भी अपने साथ शामिल करेगा, तो वो काम आला पाए का हो सकता है। क्योंकि हर एक के अंदर हर खूबी नहीं हो सकती, एक बंदे के अंदर सारी खूबियां नहीं हो सकती, तो वन मैन शो से बचें। क्योंकि हम चाहते हैं बस मैं ही करूं और मेरा ही नाम, मेरी वाह वाह, नहीं, लोगों के साथ, लोगों को साथ मिलाएं। आप देखेंगे कोई कोई टैलेंट लाएगा, कोई कोई टैलेंट लाएगा, सब मिलके जब वो उस काम में हिस्सा डालेंगे ना, तो वो काम बेहतरीन हो जाएगा, जैसे उसने सबको मिलाया इसके अंदर। और जब आप दूसरों के साथ मिलके काम करते हैं तो लेग पुलिंग नहीं करनी, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ आगे रखनी है, अपनी स्ट्रेंथ उनको देखनी है, आपके अंदर जो सलाहियत है वो आगे करनी। ताकि अब देखें, अगर कोई एक बंदा है वो अगर अच्छा पैसों का हिसाब किताब रख सकता है, तो दूसरा मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होगा, वो मैनेजमेंट में अच्छा है लेकिन बोलने में हो सकता है इतना अच्छा ना हो, तो तीसरा बोलने में अच्छा होगा। तो सब अपनी स्ट्रेंथ लेकर आएंगे ना, अपनी अच्छी जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटीज रखी हैं, तो देखिए वो काम बहुत बेहतर हो सकेगा। फिर आप देखें जुलकरनैन एक बेहतरीन लीडर था, वो बॉस नहीं था, लीडर था। फर्क होता है लीडर में और बॉस में। आप लोग भी जब ग्रुप्स में हो तो बॉस ना बने, लीडर बने। बॉस क्या होता है, बस हुक्म चलाता रहता है। उसने कहा आतू नहीं हो फ्रेगाले की तरह, तो हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ के काम करने वाला भी था अपनी टीम के साथ। और इस सूरत के अंदर हमने अभी तक तीन बादशाहों का जिक्र पढ़ा है। कौन कौन से बादशाहों का जिक्र पढ़ा आपने? असहाबे कहफ के मुल्क का जो बादशाह था, फिर खिजर और मूसा अलैहि सलाम की कहानी में बादशाह जो कश्तियां छीन लेता था, फिर अब जुलकरनैन का। तो दुनिया में इस तरह के ही बादशाह होते हैं। एक वो बादशाह हैं जो बस अपने तरफ लोगों को चाहते हैं कि हमारी मर्जी से चलो, वरना तुम सांस नहीं ले सकते, हमारा दिया हुआ लाइफ स्टाइल ही तुम करोगे। दूसरे वो होते हैं जो करप्ट होते हैं, जैसे वो कश्तियां छीनने वाला था। तीसरे जो जुलकरनैन जैसे होते हैं, लेकिन काबिले तारीफ सिर्फ एक ही है इनमें। और ये भी हम देखते हैं कि लीडर को, या आप, मैं अब यही अगेन बात करूंगी कि लीडर जब मैं कह रही हूँ या बादशाह जब मैं कह रही हूँ, तो देखिए आप अपने घर के बादशाह हैं, आप अपने दोस्तों के सर्कल में बादशाह हो सकते हैं, क्योंकि आपकी दोस्तें आपसे इंप्रेस रहती हैं, या आपकी बात को सुनती हैं, या आपकी बड़ी से है किसी जगह पे, या आप अपनी कम्युनिटी के अंदर हैं, तो वहां पे आप बहुत एक लीडरशिप की रोल अदा करती हैं, या आप अपनी क्लास में हैं। तो लीडर जहां पे भी हो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम कर दें जो बाद में सदका जारिया बन जाए, जिससे बाद में इंसानियत को फायदा होता रहे, जैसे जुलकरनैन ने कर दिया। फिर हम ये भी देखते हैं कि लीडर जो होता है वो इंसाफ का साथ देने वाला होता है, जुल्म का साथ नहीं देता। सही लीडर वही होता है। आजकल न्यूट्रल रहने की बहुत बात होती है कि न्यूट्रल रहा जाए भाई, किसी के साथ भी ना दो। हम अपने रिश्तेदारों में भी कहते हैं हम तो न्यूट्रल रहते हैं, नहीं भाई मैं तो नहीं किसी का साथ देती, इसलिए कि भाई मैं क्यों बुरी बनूं। हर एक को ये फिक्र बहुत ज्यादा है कि मैं क्यों बुरी बनूं, मैं अच्छी ही बनी रहूं, हर तरफ ही अच्छी बनी रहूं, इधर भी अच्छी बनूं उधर भी अच्छी बनूं। जो हर तरफ ही अच्छा बनना चाहता है ना, वो कभी हक का साथ नहीं दे सकता, वो कभी बातिल को बातिल नहीं कह सकता। लिहाजा न्यूट्रल रहना नहीं है बल्कि हक का साथ देना, जहां हक है उसके साथ खड़े होना, ठीक है, उसमें भी अपना रोल प्ले करना है, जैसे कि जुलकरनैन ने किया था। और फिर हम देखते हैं कि असबाब को इस्तेमाल करना है, जो अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं उनको अल्लाह के रास्ते में लगाना है। और फिर हम ये देखते हैं कि जो भी आपको असबाब या ताकत या हुकूमत सब मिली है, उसकी पूछ होनी है, लिहाजा उसको इस तरह से लगाएं कि अल्लाह ताला को जवाब दे सके कि या अल्लाह मेरे पास तूने ये नेमत दी थी ना, मैंने तेरे रास्ते में लगाई। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जैसे इस कौम का जुल्करनैन को नहीं पता था जो दूसरी कौम थी, इस तरह बहुत सारी कौमों का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, याजूज माजूज का भी आज तक किसी को नहीं पता चला वो कहाँ पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। हमें बहुत सारी चीजें, कई कबाइल ऐसे मिलते हैं दुनिया के अंदर, उनका लोगों को नहीं पता लेकिन वो हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हारे पास इल्म नहीं है, अल्लाह के पास है, तुम्हारा इल्म कलील है, इसको मान जाए। हमें ये भी पता चलता है कि एक लीडर को जल्दबाजी, जल्दी से गुस्से में आने से परहेज करना चाहिए। हम देखते हैं इस चीज को कि कितनी टॉलरेंस थी खिजर अलैहिस्सलाम की स्टोरी के अंदर भी, और खिजर मूसा और यूशा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में भी, कि कितनी टॉलरेंस से साथ उन्होंने बर्दाश्त किया, यानी गुस्से को पी लिया। फिर हम ये देखते हैं सूरत में कि फितने आते रहेंगे, या जाहिर है फितने इस दुनिया में जिंदगी का हिस्सा है। कहीं आपको माल के फितने से सामना करना पड़ेगा, कहीं इल्म के फितने का, कहीं हुकूमत के फितने का, कहीं ईमान के फितने, तो आप समझते हैं ना, इम्तिहान। तो इम्तिहान आएंगे, लेकिन अगर इम्तिहानों में कामयाबी से आपने निकलना है उनसे, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत और अल्लाह के कलाम को पकड़ लेना। क्योंकि शुरू के अंदर भी अल्लाह के कलाम की बात है, एंड में भी यूहा इलैया की बात है, वही की बात है। अल्लाह के कलाम को पकड़ना ही निजात दे सकता है। वही लोग बच जाएंगे, वही लोग इन फितरों के दौर से खैरो आफियत से निकल जाएंगे, जो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत रखेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि टेस्ट खत्म हो जाएंगे जिंदगी से, टेस्ट नहीं खत्म होने। हाँ, मगर आप इनसे बखैर व आफियत ईमान को लेके निकल सकते हैं जब मजबूत होगा। तो कहा वालों ने भी अल्लाह पे भरोसा किया, उन्होंने दुआएं की अल्लाह ताला से, तो कैसे अल्लाह ने फिर उनके ईमान की भी हिफाजत की, उनकी हिफाजत की। बाग वाले में देखें, उसमें भी, उसमें आप देखते हैं कि जब तकब्बुर आ गया था किसी में और नाशुक्री आ गई थी, तो उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत नहीं रहा था, तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे उसके लिए दुनिया में भी उसको इसकी सजा दे दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म के फितने से आजमाया गया, तो उन्होंने आजी दिखाई। ये बताता है कि जब हमारे पास इल्म आए तो हमें कैसे होना। और कभी कोई ये ना कहे मैं तो खुद इतना बड़ा स्कॉलर हूं, मैं क्यों किसी स्कॉलर को सुनने जाऊं, मेरे पास तो खुद इतना नॉलेज है। इसमें अपनी हद तक महसूस करे कि मैं किसी के आगे बैठू। बुखारी जैसे इतने बड़े मुहदिस, वो भी जाके किसके आगे बैठते थे। उन्होंने फरमाया कि मैंने इतने ही उस्ताद ऐसे थे कि मैं उनके आगे बैठा, तो मैंने अपने इल्म को उनके इल्म से ज्यादा पाया। जुल्करनैन को देखें, इस तरह का भी फितना आएगा जिंदगी के अंदर की हुकूमत मिल जाएगी, तो फिर कैसे उसमें से निकलना है वो भी। यानी हमें ये सूरत सिखाती है, हर जुमे को जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस सूरत में, कि फितनों के दौर से या फितनों के जो भी, जिस फितने से भी हम गुजर रहे हैं, उसमें से हम निकले कैसे। फिर हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में गुलूफ ना करें, कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बढ़ा के, इतना बढ़ा देना कि अल्लाह के बराबर कर देना, और ऐसे कहना कि वो हमें बस निजात देंगे, वो हमें ऐसे करेंगे, या वो ही हमारे हैं, या उन्हीं को हम समझे और उन्हीं से मदद मांगे और उन्हीं से दुआएं करने लग जाए, तो वो बता दिया कि उनका मकाम एक बशर का है। फिर हम इंशाल्लाह कहना इस सूरत के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कि आप देखें आपसे सरम ने भी इंशाल्लाह में कहना भूल गए थे, तो फिर डिले हो गया इस सूरत में। फिर हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इंशाल्लाह कहा कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ सबर करूंगा, और फिर हम देखते हैं कि याजूज और माजूज भी इंशाल्लाह कहेंगे तो निकलेंगे वहां से। ठीक है, तो इसलिए इंशाल्लाह कहना कितना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि एक मुसलमान की तबीयत में ना खैर ख्वाही होनी चाहिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत का दर्द होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दर्द रखते थे इंसानियत का, इसीलिए उनके लिए आप कितना कुढ़ते थे, कितना अपनी जान को हलकान करते थे। जुल्करनैन ने भी खैर ख्वाही की इस कौम की, तो दीवार बना के दी। तो इंसानों की खैर ख्वाही का जज्बा होना चाहिए। और इस सूरत में जिंदगी की हकीकत भी बता दी गई, कि जिंदगी की हकीकत क्या है, चंद दिन की जीनत है और कुछ भी नहीं है, और आजमाया जा रहा है तुम्हें इसमें। अब कौन है इनमें से जो तुम में से इस आजमाइश में गुजर के दिखाता है, और कौन है जो इन फितनों में कैसा रिएक्ट करता है, वो अल्लाह ने देखना। ये नहीं देखना कि किसके ऊपर फितना आया, कौन सा आया कौन सा नहीं आया, ये देखना इस फितने में से इसने रिएक्शन क्या किया। फिर सालेहीन की सोबत को इख्तियार करने का इसमें हुक्म है, तो सालेहीन की सोबतें ढूंढें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को सबर करने का हुक्म दिया गया, उनके साथ जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत क्लियरली हमें ये बता दिया कि अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। हर किस्से में आप देख रहे हैं कब याजूज माजूज खुलेंगे, अल्लाह जानता है हम नहीं जानते। खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम की उसमें देख लें, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। असहाबे कहफ कितने थे, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और आखिरी बात ये कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, जहां पे या तो जन्नत है या जहन्नम, वहां पे तीसरी कोई जगह नहीं। हमने अपनी मंजिल क्या बनानी है, इसके लिए दो काम करने होंगे, अमले साले और अकीदे की दुरुस्ती, यानी ईमान और साले अमल। अल्लाह ताला इस सूरत के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी इंशाल्लाह आपसे आप जुमे को पढ़ा करें तो थोड़े सी जहन के अंदर ये सारे सबक दोहरा लिया करें। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.